जलती शमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए।
प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा।
गुरुओं की नगरी श्री हरगोविंदपुर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका के रूप में राजकुमारी दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1940 में अखंड भारत के सायलकोट क्षेत्र में हुआ। बचपन से ही आपको श्रीकृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था। भक्ति भावना के फलस्वरूप आपको सन 1956 में ब्रह्मा कुमारीज होशियारपुर में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। सन 1956 में आपको होशियारपुर में ही संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा से मिलने का और सन 1965 में संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा से दिल्ली में मिलने का सुनहरा अवसर मिला और फिर आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। आपने सन 1965 से सन 1970 तक अमृतसर, जम्मू, लखनऊ, लुधियाना और पठानकोट में अपनी सेवाएं प्रदान की। सन 1970 से आप श्री हरगोविंदपुर में ही रहकर विश्व शांति का संदेश जन जन तक पहुंचा रही हैं। आपके सानिध्य में सैकड़ों विद्यार्थी ईश्वरीय ज्ञान का रसपान कर रहे हैं।
शुरू से ही श्री कृष्ण से हमारा बहुत प्यार था। भक्ति पूजा पाठ करते थे, व्रत बहुत रखती थी। श्री कृष्ण की मूर्ति मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जैसे हमारे माता जी मीरा की बातें सुनाते थे, कहते थे आप जैसे मीरा की तरह करती हो। तो फिर 1956 में जहां पर हमारा स्कूल था आर्या समाज, वो स्कूल बंद हो गया, तो उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। थोड़े दिनों के बाद मुझे पता चला कि जहां पर दो देवियां आई हैं, वो देवियों का नाम नहीं जानते थे, सभी कहने लगे देवियां आई देवियां आई। जब एक दिन सत्संग हो रहा था तो मैं अपने माताजी के साथ गई, वहां चंद्रमणि दीदी और अचल बहन जी बैठे थे, कीर्तन हो रहा था। उसके बाद कीर्तन के उन्होंने हमारे से परिचय लिया, आपका नाम क्या है, आप कितना पढ़ी हैं, आप कितने भाई बहन हैं, सारा उन्होंने परिचय लिया। मेरे को दीदी जी को देख के बहुत खुशी हुई कि जैसे मैं बिछड़ी हुई मिल रही हूँ, जैसे मैंने इनको कहीं देखा हुआ है। उन्होंने कहा कि आप कल हमारे स्थान पर आना, जहाँ अचल बहन रहती है वहाँ हम आपको ज्ञान सुनाएंगे। फिर हम दूसरे दिन गए, उस दिन मेरा व्रत था, पुण्य का दिन था, व्रत रखा हुआ था। उन्होंने मेरे को वीरवार का भी दिन था, उन्होंने मेरे को भोग दिया। मैंने कहा दीदी जी मैंने तो खाना नहीं, मेरा तो आज व्रत है। वो बोले जी राबड़ी है जी, आप खा लो, उसमें केला पड़ा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने वो खा ली। मेरी उनकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी, दिल नहीं करता था घर जाने को। फिर मैं अपनी सहेली के साथ 8 बजे जब घर आई तो सभी पूछने लगे आप कहाँ गए थे क्या। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे दो देवियां आई हैं, उनका नाम चंद्रमणि है। तो वो कहने लगे ऐसा नाम तो कभी सुना नहीं, देखना तो चाहिए कि जिसका नाम ऐसा है वो कैसे होंगे। फिर दूसरे दिन मेरे माताजी भी मेरे साथ गए, भाभी भी गई, उन्होंने देखा, बहुत अच्छा लगा। जब मुझे 5-6 दिन हो गए वहां गए तो हमारे शहर में लाइट नहीं थी, लंप जल रही थी, एक उस तरफ जल रही थी एक इस तरफ जल रही थी। तो एकदम जैसे कि लाइट में दिखाई तो दे रहे थे, पर मुझे ये नहीं पता लाइट किसको कहते हैं। जी मुझे पता था कि लो हो रही है, रोशनी है। तो थोड़ी देर के बाद जब मेडिटेशन कर रहे थे, योग कर रहे थे, दीदी भी बैठे थे, छोटा सा कमरा था, 30-35 माताएं बहनें हम बैठी थी। तो एकदम जैसे कोई बाहर रोशनदान से लाइट आती है, ऐसे घूमती है और घूम घूम कर मैं थोड़ा ऐसे करती हूँ जैसे करंट पड़ता। तब मुझे करंट का भी पता नहीं था कि करंट किसको कहते हैं। जैसे मेरा 2-3 बार शरीर हिला, फिर वो लाइट जो है वो बाहर चली गई। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई, धीमा धीमा मेरी आंखों में पानी आने लगा, सभी मेरे को हिलाने लगे। मैंने उनको हाथ से कहा मेरे को बिल्कुल हिलाओ नहीं, मैं ऐसे शांत बैठी रही। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा भी नहीं और मैं अपनी सहेली के साथ घर चली गई। जब घर गई तो मेरा बोलने को दिल नहीं करता था। सिस्टर पूछती क्या बात हुई, मैंने कहा कोई बात नहीं हुई। बोला खाना खाओ, मैंने कहा मेरा तो दिल नहीं है, मैं दूध पी लूंगी। रात को फिर मैंने दूध पिया और सो गई। जब मैं सुबह उठी तो अपने माताजी को बताया, कहती जी तो बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा, आप भी जाना, मेरे को भी ले जाना। इस तरह करते करते मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर जब दूसरे दिन गई, सुबह मेरे को जाने की छुट्टी नहीं थी, ना ही उन्होंने सुबह का कहा था। जी 1956 की बात है। फिर हम शाम को गए, मेरे मन में यही ख्याल आए कि वो समय कब आएगा जब मैं जाऊंगी, वो शाम कब आएगी जब मैं जाऊंगी। जब मैं गई ऐसे ही, फिर क्लास लगी हुई थी, बैठे हुए थे, मैं भी जाकर बैठ गई। जब बैठे बैठे 15-20 मिनट हो गए तो कोई 6-7 फुट ऊंची दीवार है और उस पर श्री कृष्ण श्री राधा खड़े हैं और मैं उनकी तरफ देख रही हूँ। वो कमरा ही बदल गया है, वो मनुष्य बदल गए हैं। ना वो मेरा कमरा है, ना वो जो भाई बहन बैठे हैं वो है, ना मैं ही। और अपने आप को मैं चम 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 वस्त्रों में देख रही हूँ। जी क्या देख रही हूँ? और श्री कृष्ण की जो मधुर आवाज है बंसरी की, अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो वो मेरी आंखों के सामने मेरे कान सुन रहे हैं। इस तरह का मेरे को अनुभव हुआ। फिर आधा घंटा मैं चुपचाप बैठी रही। फिर रात को 8 बजे हम अपने घर आए। फिर मैंने अपने घर में सुनाया तो हमारे लौकिक पिताजी कहते हैं जे कभी हो नहीं सकता, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ तो तेरे को कैसे हो गया। मैंने कहा भी मैंने तो ऐसे देखा है, आप मेरे साथ चलना। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी लगन बढ़ती गई। मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहा, आप क्यों जाती हो, कैसे जाती हो इतना टाइम। जब 1 वर्ष हो गया तो मेरे आगे बड़ी परीक्षाएं आई कि तेरी शादी करनी ऐसे है। हमारे लौकिक पिताजी कहने लगे लड़कियां तो कभी राजाओं ने नहीं रखी, तो मैं गरीब आदमी कैसे रखूंगा। मैंने कहा आप ना रखना, वो रखेगा। इस तरह करते 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 6 मास बीत गए, 1 वर्ष बीत गया। रोज यही बातें, रोज यही बातें। फिर मैंने अपने पिताजी को कहा कि बांध कर किसी को खीर नहीं खिलाई जाती, ऐसे खुशी से खिलाई जाती है। आप मेरी तरफ देखो, मैं जो कह रही हूँ वो मेरी बात सुनो, दुनिया की बातें मत सुनो। तो हमारे शहर में भी फिर थोड़ा आगामा हो गया, कठी कठी लड़कियां चली, छोटा गांव था। बोलते थे 1-2 देवियां शहर में आई है तो इतना अल्लाह हो रहा है, अगर और देवियां आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। इस तरह शहर वाले बोलते थे। हमारा धीरे 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 प्यार बढ़ता गया बढ़ता गया, मेरे अनुभव बढ़ते गए। उसके बाद दीदी ने कहा कि जहाँ पर हम ब्रह्मा बाबा को लाएंगे, ब्रह्मा बाबा आएंगे। वो अमृतसर आए तो अचल बहन जी फिर उनको यहाँ ले आए। जब यहाँ ले आए तो मेरे मन में आया, कहते हैं कि वो जब बाबा आएंगे ना तो आप उनसे मिलना, फिर देखना शिव बाबा आते हैं। तो मैं ब्रह्मा बाबा को ही भगवान मानती थी, क्योंकि मेरे मन में था कि जब उसमें आता है तो वही भगवान हो गया। वो तो फिर धीरे धीरे पता चला कि वो अलग है, जे अलग है, उसमें जे आता है। तो मेरे मन में यही आता था वो कैसे होंगे, क्या होगा, मैं उनसे मिलूंगी। तो दीदी ने हमें पहले ही कह दिया था कि जब बाबा आएंगे ना तो आप सब अपने अपने घरों में रात को वापस चले जाना। हम ना कोई 18-20 कन्याएं थी, जब रात का समय बाबा से हम मिले तो मेरे को कहने लगे आप घर जाओ। मैंने कहा जिस तन में भगवान आया रोज आप हमें ज्ञान देते हैं, वो आ रहे आज तो मैं इधर ही रहूंगी, जहां मेरी दादियां रहेंगी मैं भी रहूंगी। फिर उन्होंने क्या किया कि रात को दीदी को हेडमास्टर स्कूल का कहने लगा कि दीदी जी जे मेरी अर्ज मानो सब कन्याओं को अपने घर भेज दो। हमारे शहर में कुछ ऐसे गुंडे लोग भी थे जो देखते रहते थे, ध्यान रखते थे कहाँ जाती हैं क्या करती हैं। तो फिर उसके बाद मेरे को बाबा ने अपने हाथों से खाना खिलाया और कहा बच्ची आप जाएंगी घर, आप घर जाएंगी। मैंने ऐसे सिर से कह दिया नहीं। उन्होंने मेरे को कोफ्ते की सब्जी, आलू मेथी और खीर की वो खीर खिलाई हाथों से। फिर मैंने खा के कहा नहीं जाना। वो कहते नहीं बच्ची घर जाना है, सुबह को आना है। फिर मैंने कहा सबको कि जितनी भी बहने हैं पहले वो अपने घर जाए फिर मैं जाऊंगी। सबको छोड़ करके, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, फिर सबको मैं छोड़ करके सभी को मैं और माताएं, तो फिर मैं बाद में अपने घर गई। मेरे मन में आया कि आज मैंने नहीं सोना, जिस तन में भगवान आते हैं वो जहां पर आ चुके हैं तो मैं आज सोना नहीं है। जाते ही मैंने क्या किया कि हैंड पंप से 4-5 बाल्टियां पानी की निकाली तो भाई बोलने लगा हमें सोने देना कि नहीं, मैं भर के पानी रख लिया। थोड़ी देर बाद ज्ञान अमृत पढ़ने लग गई, उसके बाद कुछ किताब पढ़ने लग गई। आज मैंने सोना नहीं है, आज मैंने सिर्फ यही काम करना है, कब 4 बजे तो मैं स्कूल जाऊं जहां बाबा ठहरे हुए। उसके बाद फिर मैंने आटा गूंद लिया, आटा गूंद के मैंने 8 परौंठियां बना ली, दही को देखा, माखन निकाला और जो गायें भैंस थी उनको ज्यादा ज्यादा चारा डाला कि जो जल्दी दूध दे दें। एक भाई हमारे घर में वो भैंसों को संभालता था, गायें भैंस को, मैंने कहा उसको भी हम बाबा ही बोलते थे। मैंने कहा बाबा आप जल्दी दूध निकाल दो, आज हमने वहां दूध लेकर जाना है। वो कहता बेटा इन्होंने तो अपने समापारी देना है, आप ज्यादा चारा ना डालो, जब देना तब देना है। मैंने घड़ी को आगे कर दिया कि जल्दी बच जाएं 4। माताजी को कह दिया आप उठो, वो कहती अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, आपने सोना कि नहीं। मैंने कहा मैं तो तैयार भी हो गई, परौंठियां भी पका लिया, सारा काम मैंने कर लिया है जो जो भी घर का था, अभी आप मेरे साथ चलो। और वो पीछे जो भैंसे संभालता था उसको कह के गई कि मेरे बाबा आप वहां पर 2 बाल्टी दूध ले आना, एक में भैंस का एक का गाय का, तो आप वहां आना मेरे से मिलना। बोला ठीक है। तो फिर मैं ना घड़ी को जब आगे कर दिया तो माताजी कहते थोड़ा ठहरो। फिर हम दोनों चले गए पैदल ही करते करते। फिर वहां पर 4:15 बज गए, 5:15 बजे बाबा दूध लेकर आया, हमने वो दूध संभाला किया। अभी दादियां भी तैयार हो रही थी, बाबा भी। मेरे को ये शौक था कि मैं फिर जाकर बाबा से मिलूं। तो वो जो गाय भैंसे संभालता था वो हमारे को ना मेरे को हर मास 1.25 रुपया देता था कि जे बेटा आप वहां मेरा चढ़ा देना। उस दिन भी मेरे को 1.25 रुपया देने लगा। मैंने कहा बाबा आज 2 रुपये तो दे दो, आप 1.25 देते हैं। कहता अच्छा। और जब बाबा आए तो हम काफी कन्याएं थी, बड़ा ग्राउंड था, तो मेरी ड्यूटी लगाई थी अचल बहन जी ने कि आप खाना लेकर के फलाने टाइम वहां पहुंचना है, साथ में 2-4 माताएं भी थी। हम खाना लेकर के वहां जब पहुंचे तो बाबा आए हुए थे, टाइम था 8 बजे का, आगे वो 7:30। मेरे को देख करके बहुत ख्याल आया कि देखो सारी दुनिया आ गई, मैं पीछे रह गई। देखो ये बड़े प्रधानमंत्री बन गए हैं जो आगे आकर बैठ गए हैं, रोज तो क्लास नहीं करते, रोज तो दीदी से मिलते नहीं, आज सारा शहर आके बैठ गया है, मैं तो पीछे। मेरे को ना अंदर गुस्सा सा आ गया, जोश आ गया, मैं सबको उलांग करके आगे 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 बाबा के पास चली गई। और अपनी सखियों से पूछने लगी, आपने गीत तो नहीं गाया अभी? उन्होंने बोला, नहीं आपको देख रहे थे, अभी तो बाबा आए हैं, अभी तो गीत गाना है। जब ऐसा बाबा के आगे गीत गाया, भारत ज्योत जगाएगी हम, ज्ञान का अमृत पिलाएंगी हम, लेकिन जा दिलाएंगी हम कल्प पहले की कहानियां। जब ऐसा बाबा ने गीत सुना तो बाबा चंद्रमणि दीदी को कहते, चंदा इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास बैठो। दीदी गए, कहते जे कन्याएं तो बहुत अच्छी हैं, जे बड़े अच्छे गीत गाती हैं, जे एक एक जाकर एक एक आश्रम संभालेगी, सेंटर संभालेगी, ऐसी कन्याओं का गाड़ा भर के अमृतसर ले जाते हैं और वहां से इनको ब्रह्मा भोजन खिलाकर और जगह भेज देंगे। जब जे हमारे पीछे मित्र संबंधी भाई चाचा ताया सब बैठे थे, शहर वाले भी बैठे, वो कहते ओ बुढ़िया इनको लेने ही आया है, ऐसे हमने आवाज सुनी, हम थोड़ा अंदर से डर गए, पता नहीं जी क्या करने लगे। फिर इस तरह की आवाजें आती रही, हम चुप रहे। मम्मा को भी बहुत अच्छा गीत लगा, मम्मा जहाँ दो रात रहे, मम्मा को लक्ष्मी बनाया, सात सीढ़ियां बनाई। जैसे ही मम्मा ने आए हर गोविंदपुर में तो काफी स्थानों में गलीचा, पहले सड़क पर फूलों की, जैसे वो दिखाते है ना बिलनी ने, वो सड़कें बनाई थी कि जहाँ मेरे राम आएंगे, हमने वो सड़कें बनाई बाबा के लिए, मम्मा के लिए। पता नहीं शहर में कहाँ से इतने फूल इकट्ठे हो गए। जब वो सड़क पूरी हुई तो फिर अंदर गलीचे ही गलीचे थे, वहां पर मम्मा की स्टेज बनाई थी लक्ष्मी रूप में। शहर के 12 हमारे गांव है, 12 गांव के आसपास और गांव है, सब लोग आए थे गर्मियों के दिन, सबने मम्मा को भी देखा, बाबा को भी देखा। इस तरह शहर में काफी आवाज हो गई कि जे ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, जे सब लड़कियां जाती है, शहर की 18-20 लड़कियां थी जो रोज क्लास करती थी। जहां हमारे सुरिंदर बहन जो बनारस में है वो रहती थी, मम्मा ने कहा मैं इसको ले जाऊंगी। सभी ने कहा मम्मा फिर हमारी क्लास कौन कराएगा? कहा राजकुमारी कराएगी। मैंने कहा मम्मा मेरे को तो छुट्टी नहीं है, तो फिर मैं कैसे क्लास करा सकती हूँ? मम्मा ने मेरे टोली दी मुख में डाली, कहा तेरे को छुट्टी मिल जाएंगी, राजकुमारी क्लास कराएंगी, आज से राजकुमारी वाणी पढ़ेंगी। मेरे को बहुत खुशी, पर अंदर जे भी की छुट्टी मिल जाए। जब मैं मम्मा के पास 10 दिन रह के अमृतसर से जहाँ आई तो आके 12 बजे थे, फिर खाना खुना खा के 3 बजे मैं अपने पिताजी के पास आई दुकान पे। मैंने कहा पिताजी मैंने सवेरे रोज जाया करना क्लास करने। कहते नहीं सवेरे नहीं जाना, शाम को। मैं कह नहीं मेरे को ना 4 चीजें चाहिए। कहते क्या चाहिए? मैं कह एक मुझे नहाने का साबुन चाहिए, एक मुझे बूट चाहिए, एक मुझे बैटरी चाहिए टॉर्च, और एक मुझे जराबे चाहिए। कहते अच्छा। फिर मेरे पिताजी मेरे को छोड़कर गए। 5 बजे हमारे जहाँ क्लास होती थी पहले शुरू में, फिर वो मेरे को रोज छोड़कर जाते थे, बैटरी मेरे हाथ में होती थी। इस तरह मम्मा ने मेरे को जे निश्चित किया कि आपको क्लास करानी है। उसके बाद दीदी चंद्रमणि ने मेरे को पठानकोट भेजा, गुरदासपुर भेजा, 1965 में बड़ी लड़ाइयां थी, जम्मू भेजा, श्रीनगर भेजा, फिर लखनऊ में बड़े दीदी मनमुनी ने भेजा, वहां भी मैं 9 मास रही। इस तरह करते करते फिर हम अपने शहर में आई, क्योंकि यहाँ कोई बहन ठहरती नहीं थी। कहते थे जे तो गांव है, मेरे को अच्छा लगता था, तो तब से मैं जहाँ पर अभी हूँ, जहाँ हरगोविंदपुर में ही रहती हूँ, वहाँ बीच बीच में जाती हूँ, जहीं भी कहीं भी कोई सेवा होती है तो मैं जाती हूँ। तो हमारा शुरू से चंद्रमणि दीदी और अचल बहन जी ने हमें गाइड किया, उनका जीवन हमें बहुत अच्छा लगता था। फिर जब मेरे को लखनऊ भेजा तो मेरी टिकट इधर की थी, तो उसके बाद मैंने बड़े दीदी को कहा कि दीदी जी मेरी तो टिकट रिजर्व है। वो कहती आप टिकट मेरे को दे दो, मैं तेरी टिकट करा दूंगी। मैं कह ठीक है। फिर ना वहां मैं रह करके लखनऊ में जब आई तो इधर प्रदर्शनी करनी थी। अमर कौर माता जी ने कहा कि बेटा जहां प्रदर्शनी करनी है आप मास दो मास जहां रहो। मैं कह ठीक है। जब फिर वहां पर हम रहे प्रदर्शनी की तो 2000 रुपए में हमारी प्रदर्शनी हो गई। सब बहनों को हमने साड़ियां, रुपए, किराया, टोली सब दी। इतना सस्ता जमाना था। प्रदर्शनी लगाई, काफी लोगों ने देखा। पहली बार हमने लगाई थी उससे ना मेरे पास 320 रुपए बचे तो मैं मधुबन गई। मैंने बड़े दीदी को कहा कि दीदी जी हमने प्रदर्शनी की तो आज ना उनका भी वो निकली थी प्रभात फेरी शहर वालों की, मंदिर वालों की, तो हमारी भी निकली थी। तो हमने ना वहां पर उधर वो पार्टी खड़ी थी इधर वे पार्टी खड़ी थी तो हमने वहां पर नारे लगाए जागो जागो भगवान आया है सब सत्तों में सत महान। तो उन्होंने भी हमारे साथ साथ दिया। बहुत अच्छा समझा कि आपकी प्रभात फेरी बहुत अच्छी है। बटाला से काफी भाई बहन आए थे तो हमने जे प्रभात फेरी निकाली और सारे शहर को जैसे कि पता चला कि ये आश्रम में इतने भाई बहन आते हैं। इस तरह करते करते मैं दीदी को कहा बड़े को कि मेरे पास 320 रुपए बचे हैं तो दादी जी जी आप ले लो। वो कहते मिठड़ी आपके पास टेप रिकॉर्ड है। मैं कह जी नहीं साढ़े पास नहीं। कहते इसमें और डाल के तो आप टेप रिकॉर्ड ले लो। मैं कह दादी दीदी जी मेरे को चलाना नहीं आता। कहते अनोखा भाई है एक अनोखे लाल को बुलाओ अनोखे लाल को बुलाओ। वो आ गया। वो कहता हां जी। कहते इसको एक अच्छे पीस दो जर्मन का और इसको सिखाओ पर मिठड़ी एक हाथ की रखना। भैंस भी एक हाथ की होती है ना अच्छा दूध देती है। तो मैंने कहा अच्छा जी। मैंने उनसे सीख लिया किस तरह जो दबाना है। थोड़ी देर के बाद सती दादी जो है वो गुरदासपुर में रहते थे उनकी जो बहन है वो प्रकाशमणि दादी थी तो वो उसे मिलने जा रहे थे 2 घंटे के बाद अपने रूम में। तो मैं उनके साथ गई। मैंने कहा दादी जी मेरे को भी ले जाओ प्रकाशमणि दादी के पास ना कुमारका दादी के पास। कहती आओ। जब मैं गई उनसे भी यही बातें की कि दीदी हमने दादी प्रदर्शनी की है वहां बड़े अच्छे लोग हैं ऐसे उन्होंने सुना है बहुत अच्छा उन्होंने समझा है। तो दादी जी मेरे पास ना 320 रुपए बचे हैं तो आप जी ले लो। कहती नहीं नहीं रानी नहीं नहीं मिठड़ी जी तुम रखो जो मेरे को मनमोनी दीदी ने कहा वही मेरे को उन्होंने कहा। मैं बड़ी हैरान कि जैसे एक ही इनकी बात है एक ही इनका बोल है। उन्होंने भी यही कहा टेप ले लो उन्होंने भी यही कहा टेप ले लो। बाकी तो बाबा ने मुझे अपना बनाया और आज मैं इस शहर में हूँ। शहर वाले सभी प्यार करते हैं क्योंकि सभी के परिवारों से जहाँ 18 कन्याएं निकली हैं तो वो सारे संपर्क संबंध में हैं सेवाएं करते हैं प्यार करते हैं आते हैं जाते हैं जब उनका दिल करता हम भी उनसे मिलते हैं। कभी कोई ऐसी बात हो खबर करने चले जाते हैं। इस तरह हमारा जीवन बाबा ने सुधार दिया बाबा ने मुझे अपना बना लिया बाबा मिला सब कुछ मिला और मुझे क्या चाहिए।
मैं बहन जी से तकरीबन 60 साल से जानता हूँ। ये सबसे शहर के मीर पार्टी थी। इनका भाई भी वाइस प्रेसिडेंट था पर इन्हें सब को छोड़कर कुछ भी परवाह न करते हुए इन्हें पुत्र धर्म को ग्रहण किया और सभी को इसका पुत्र संस्था में जुड़ा और सैकड़ों लोग इनके पास आ रहे हैं और मैं वर्णन नहीं कर सकता इतने अच्छे हैं मैं जुबान से कह नहीं सकता।
ये बहुत पवित्रता और सच्चाई के दौर पर से गुजर रहे हैं। इनका स्वभाव बहुत ही सहज बहुत ही प्यार भरा है जो मैं आपको बता नहीं सकती और हर एक के साथ इतना अच्छा बोलते हैं मीठा बोलते हैं। इन्होंने जो अपनी जिंदगी बाबा के नाम लगाई है 60 वर्ष से यहाँ आश्रम में रहते हैं लेकिन इनका प्यार और संतुष्टता और इनकी दृष्टि जो है हर एक के लिए एक जैसी है।
दीदी में सबसे बड़ी जो विशेषता है कि दीदी में देने की भावना बहुत ज्यादा है। मैं छोटी होने के कारण कई बार उनको बोल भी दूंगी क्योंकि मेरे छोटी हो समझ भी मेरी उतनी है तो फिर भी दीदी मेरे को बताएंगे कि नहीं हम बाबा के घर में बैठे हैं, हमारा सेवा क्या है हमारी, हमने किसी को नहीं देखना है, किसी की सेवा को नहीं देखना है कि वो क्या सेवा करते हैं। हमें दाता के घर में बैठे हैं, भगवान के घर में बैठे हैं, अंदर देने की भावना रखनी है, ये नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है। दाता के बच्चे बने हैं तो दाता बन के हमें देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है।
जो देता है वो देना नहीं, कहने में देना आएगा। वास्तव में क्या है, लेना है। तो जो दर्शन दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं।